काव्य के भेद एवं काव्यांग। संस्कृत काव्यशास्त्र में काव्य के अंतर्गत गद्य एवं पद्य दोनों का समावेश किया गया, किंतु हिंदी के काव्य के अंतर्गत गद्य को सम्मिलित नहीं किया गया। संस्कृत में नाटक को दृश्य काव्य एवं कविता को श्रव्य काव्य की संज्ञा दी गई और इस प्रकार काव्य के दो भेद माने गए, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य का संबंध देखने से, जिसे देखा जा सके वह दृश्य काव्य है। दूसरे शब्दों में रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाने वाला नाटक एकांकी आदि दृश्य काव्य, जबकि कानों के माध्यम से सुनकर आनंद लिया जाए वह श्रव्य काव्य। कविता को सुनकर उसका आनंद लिया जाता है, इसलिए कविता श्रव्य काव्य के अंतर्गत आती है। श्रव्य काव्य के पुनः तीन भेद किए जाते हैं, गद्य, पद्य एवं चंपू। इनमें से पद्य छंदबद्ध रचना को कहते हैं। सामान्यतः गद्य में विचारों की प्रधानता रहती है, जबकि पद्य में भाव प्रधान होते हैं। चंपू उस रचना को कहा जाता है जो गद्य पद्य मिश्रित होती है। पद्य में लय संगीतात्मकता का ध्यान भी रखा जाता है, जबकि गद्य में नहीं। गद्य में वाक्य होते हैं, पद्य में छंद। पुनः पद्यात्मक काव्य को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, प्रबंध काव्य एवं मुक्त काव्य। इस वर्गीकरण को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। श्रव्य काव्य, उनके तीन खंड गद्य, पद्य और चंपू। पद्य के दो भेद प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के दो भेद महाकाव्य और खंड काव्य, मुक्तक काव्य में प्रगीत और पाठ्य। प्रबंध काव्य उस रचना को कहा जाता है जिसमें कोई सानुबंध कथा होती तथा इसके छंदों में पूर्वापर संबंध होता है, अर्थात प्रबंध काव्य के छंद अपने पीछे वाले और आगे वाले छंद से अर्थ की दृष्टि में से जुड़े रहते हैं। दूसरी ओर मुक्तक काव्य का प्रत्येक छंद अर्थ की दृष्टि से अपने में पूर्ण होता है, उसमें पूर्वापर संबंध का अभाव होता है। बिहारी ससई एक मुक्तक काव्य है, क्योंकि उसका प्रत्येक द्वार अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र है। उसका अर्थ जानने के लिए हमें यह जानने की आवश्यकता ही नहीं है कि इसके पहले वाला दोहा कौन सा है या इसके बाद वाला दोहा कौन सा है। दूसरी ओर रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है, उसमें रामकथा को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया है। उसके चौपाई का अर्थ जानने के लिए हमें पहले वाली चौपाई पर भी गौर करना होगा, क्योंकि वे चौपाइयां एवं दोहे की दृष्टि में आपस में जुड़े हुए हैं। प्रबंध काव्य के पुनः दो भेद किए गए हैं, महाकाव्य एवं खंड काव्य। जब किसी महान व्यक्ति के संपूर्ण जीवन क्रम का विस्तार से वर्णन किया जाता है तब महाकाव्य की रचना होती है, तो जब किसी व्यक्ति के जीवन का एक खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है कवि का ध्येय होता है कि तब वह खंड काव्य की रचना करता है। उदाहरण के लिए रामचरितमानस एक महाकाव्य है, जबकि रामकुमार वर्मा कृत संत रैदास एक खंड काव्य है। बाबू गुलाब राय ने मुक्तक काव्य के भी दो भेद किए हैं, प्रगीत एवं पाठ्य। ये रचनाओं को प्रगीत मुक्तक एवं पाठ्य रचनाओं को पाठ्य मुक्तक कहा जाता है। प्रसाद या निराला के गीत प्रगीत मुक्तकों में आएंगे, जबकि बिहारी के दोहे पाठ्य मुक्तक माने जाएंगे, क्योंकि उन्हें पढ़ा जा सकता है, गाया नहीं जा सकता। श्रव्य काव्य के अंतर्गत आने वाली गद्य रचनाओं को भी अनेक भेद किए गए हैं, यथा जैसे नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, हास्य प्यंग, यात्रा वृत्त, रिपोर्ताज, आलोचना आदि। संक्षेप में कहना उपयुक्त होगा कि काव्य के अंतर्गत संपूर्ण साहित्य को समाविष्ट किया जा सकता है। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य का अंतर। प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में इतिवृत्तात्मक कथा होना अनिवार्य है। प्रबंध काव्य के छंदों में पूर्वापर संबंध होता है, अर्थात सभी छंद अर्थ की दृष्टि से अपने आगे पीछे छंदों से जुड़े रहते हैं। प्रबंध काव्य का आकार विस्तृत होता है। प्रबंध काव्य सर्गबद्ध होता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है। प्रबंध काव्य में पूर्ण रसानुभूति कराने की क्षमता विद्यमान होती है। प्रबंधकार का ध्यान कथा संगठन की ओर अधिक रहता है। प्रबंध काव्य में कुछ ही भावपूर्ण एवं मार्मिक स्थल विद्यमान रहते हैं। मुक्तक काव्य में कोई कथाक्रम नहीं होता। मुक्तक में पूर्वापर संबंध का अभाव होता है, अर्थात मुक्तक काव्य के छंद अर्थ की दृष्टि से अपने में स्वतंत्र होते हैं, आगे से पीछे नहीं जुड़ते। मुक्तक का आधार प्रबंध काव्य की तुलना में छोटा होता है। मुक्तक काव्य सर्गबद्ध नहीं होता। मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। मुक्तक काव्य में रस के छींटे पड़ते हैं। पूर्ण रसानुभूति करा सकने की क्षमता उसमें प्राय नहीं होती। मुक्तक रचयिता का ध्यान चमत्कार प्रदर्शन पर अधिक केंद्रित रहता है। मुक्तक में प्रत्येक छंद भावपूर्ण एवं मार्मिक होता है। महाकाव्य और खंड काव्य का अंतर। महाकाव्य में समग्र जीवन का चित्रण होता है। महाकाव्य में उपन्यास की भांति कथा मंद गति से आगे बढ़ती है। महाकाव्य में जीवन की विविधता एवं एकरूपता का चित्रण होता है। महाकाव्य का आकार विस्तृत होता है, अतः उसमें तथ्यों का क्रमबद्ध निरूपण करने का अवकाश रहता है। महाकाव्य की कथा विस्तृत, सुसंगठित और सुव्यवस्थित होती है। महाकाव्य के कथानक में नाट्य संधियों एवं कार्यवस्थाओं आदि की योजना कथा को सुसंगठित बनाए रखने हेतु की जाती है। महाकाव्य में मुख्य कथा के साथ साथ प्रासंगिक कथाओं की योजना भी की जाती है। महाकाव्य की कथा का सर्गबद्ध होना अनिवार्य है। महाकाव्य में छंद की विविधता रहती है। महाकाव्य के लिए आवश्यक है कि उसका नायक उच्च कुलोद्भव देवता क्षत्रिय राजा या ब्राह्मण हो। महाकाव्य की शैली उदात्त गरिमापूर्ण एवं भव्य होनी चाहिए। महाकाव्य में वस्तु वर्णन के अंतर्गत प्रकृति चित्रण, संतान उत्पत्ति, विवाह, विरह, खल निंदा एवं सज्जन प्रशंसा होना अनिवार्य है। महाकाव्य में प्रायः सभी रसों की योजना की जाती है। महाकाव्य का उद्देश्य पुरुषार्थ चतुष्टि, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति है। महाकाव्य में नायक के साथ साथ प्रतिनायक एवं अन्य पात्रों के चरित्र पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। महाकाव्य में देश काल एवं वातावरण का सजीव एवं विस्तृत चित्रण होता है। महाकाव्य में उद्देश्य की महनीयता एवं महान संदेश निहित रहता है। महाकाव्य में कथा तत्व प्रमुख होता है। कवि का सारा ध्यान कथा को विसंकलित होने से बचाने पर केंद्रित रहता है। खंडकाव्य में जीवन के एक अंश का ही चित्रण किया जाता है। खंडकाव्य में कहानी की भांति तथा तीव्र गति से आगे बढ़ती है। खंडकाव्य में कवि का ध्यान किसी एक घटना, संवेदना या भावानुभूति पर केंद्रित रहता है। खंडकाव्य का आकार महाकाव्य की तुलना में सीमित एवं लघु कलेवर वाला होता है। खंडकाव्य का कथानक संक्षिप्त होता है। खंडकाव्य में कथा छोटी होती है, अतः नाट्य संधियों आदि की योजना नहीं की जाती। खंडकाव्य में प्रासंगिक कथाओं की योजना नहीं की जाती। खंडकाव्य में सर्ग होने अनिवार्य नहीं है। खंडकाव्य प्राय एक ही छंद का प्रयोग करते हुए लिखे जाते हैं। खंडकाव्य के लिए यह शर्त आवश्यक नहीं है। रैदास जैसे चर्मकार पर भी खंडकाव्य लिखे गए हैं। खंडकाव्य की शैली के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। खंडकाव्य की सीमित आकार में इन सब का होना संभव नहीं हो पाता। खंडकाव्य में किसी एक का रसपूर्ण परिपाक संभव हो पाता है। खंडकाव्य में केवल एक पुरुषार्थ की प्राप्ति पर ही बल दिया जाता है। खंडकाव्य में प्रत्येक नायक चरित्र को उभारने का प्रयास किया जाता है। सीमित आकार होने के कारण खंडकाव्य में देश काल एवं वातावरण का चित्र नहीं किया जाता। खंडकाव्य किसी सीमित उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिखे जाते हैं। खंडकाव्य में संवेदना प्रमुख होती है। कवि का सारा ध्यान इसी मूल संवेदना को प्रस्तुत करने पर केंद्रित रहता है। काव्यांग परिचय। काव्यांग का तात्पर्य काव्य के अंग, रस काव्य की आत्मा है, शब्द उसका शरीर, छंद उसके वस्त्र हैं और अलंकार अनेक उसके आभूषण। इस उप प्रकरण के अंतर्गत हम रस, अलंकार, शब्द शक्ति एवं छंद पर चर्चा करेंगे। रस के अवयव एवं भेद। परिभाषा। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस की निम्न परिभाषा दी है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। काव्य को पढ़ते या सुनते हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव की ही विभावादि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। रस का महत्व। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना गया है। सारहीन काव्य निर्जीव है, अतः रस के बिना काव्य का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे प्राण के अभाव में शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार रस के अभाव में कोई रचना काव्यत्व से ही रहित हो जाती है। रस ही कविता को प्राणवान बनाता है, वही पाठक या श्रोता को आनंद मग्न करके भाव समाधि में पहुंचा देता है। अतः रस को काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जा सकता है। यह काव्य का अंतरंग तत्व है, बहिरंग तत्व नहीं। अतः अलंकार आदि की भांति यह काव्य की शोभा नहीं बढ़ाता, अपितु शोभा उत्पन्न करता है। काव्य के अन्य सभी तत्व रस के ही उपादान है। अतः निर्विवाद रूप में रस ही काव्य का सर्व प्रमुख तत्व है। श्रृंगार रस का नाम अस्थायी भाव। श्रृंगार रति, वीर, उत्साह, रौद्र, क्रोध, विभत्स, जुगुप्सा यानी घृणा, अद्भुत, विस्मयकारी, शांत, निर्वेद, हास्य, हास, भयानक, भय, करुण, शोक। इनके अतिरिक्त दो रसों की चर्चा और होती है। वात्सल्य संतान विषयक रति, भक्ति भगवत विषयक रति, रस और उनके अस्थायी भाव। अस्थायी भाव की संख्या नौ ही मानी गया था, मूलतः नवरस ही माने गए हैं। रति के तीन भेद माने जाते हैं, दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति, भक्ति संबंधी रति। इन तीनों में क्रमशः श्रृंगार, वात्सल्य एवं भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। रस के अवयव। रस के अवयव यानी अंग हैं अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। इनकी परिभाषा निम्न प्रकार है। अनुभाव। भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, वाचिक, कायिक, सात्विक, आहार, अश्रु, स्वेद, रोमांस आदि अनुभाव हैं। विभाव। जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है उन्हें विभाव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। संचारी भाव। अस्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। ये सभी रसों में संचरण करते हैं, इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। हर्ष, चपलता, गर्व संचारी भाव हैं। अस्थायी भाव, जो भाव हृदय में सदैव अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध होते हैं, उन्हें अस्थायी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 9 मानी गई है। रति, उल्लास, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, हास, भय, शोक स्थायी भाव हैं। रसराज, श्रृंगार को रसों का राजा माना गया है। इसकी व्याप्ति सर्वत्र होती है। रति नामक स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। महाकवि देव ने लिखा है, भूल ही कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। रसों का परिचय उदाहरण। पहला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो भेद, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। रति नामक स्थायी भाव है, श्रृंगार रस से परिणत हो जाता है। नायक नायिका के मिलने के प्रसंग में संयोग श्रृंगार तथा उनके विरह में वियोग श्रृंगार होता है। इसके अवयव निम्न मत है। आश्रय नायक, आलंबन नायिका, उद्दीपन नायिका का चेष्टाएं, हाव भाव तिरछी चितवन मुस्कान, अनुभाव कटाक्ष आलिंगन चुंबन आदि। संचारी भाव लज्जा, हर्ष, चपलता। उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहनो हंसय देन कहे नट जाए। बिहारी। दूसरा वीरस। उत्साह नामक स्थायी भाव ये वीर से परिणत हो जाता है। इसके अवयव निम्नमत है। स्थायी भाव उत्साह, आलंबन शत्रु, आश्रय नायक वीर पुरुष, उद्दीपन युद्ध के बाजे, अनुभाव अंगों का फड़कना रोमांच। उदाहरण, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तीसरा शांत रस। निर्वेद नामक स्थायी भाव विवाद विभाव आदि से संयुक्त होकर शांत रस की निष्पत्ति करता है। इसके अवयव निम्न है। स्थायी भाव निर्वेद, आलंबन ईश्वर चिंतन, संसार की असारता, आश्रय ज्ञानी व्यक्ति, उद्दीपन सत्संग, दार्शनिक ग्रंथों का पठन आदि। संचारी ग्लानि, उद्वेग, दैन्य, जड़ता। उदाहरण, मन रेतन कागज का पुतला, लागे मूद विनस जाए, छिन में गर्व करें क्यों इतना। चौथा वात्सल्य रस। वात्सल्य नामक स्थायी भाव ही विभाव आदि के संयोग से वात्सल्य रस में परिणत होता है। इसके अवयव निम्न है। अस्थायी भाव वात्सल, आलम्बन पुत्र या संतान, आश्रय माता पिता, उद्दीपन संतान के क्रियाकलाप। उदाहरण, जसोदा हरिपाल ने झुलावें, हलरावें दुलरावें, मल्हावें जोई सोई कुछ गावें। पांचवा हास्य रस। किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि से हास्य रस उत्पन्न होता है। इसके अवयव निम्न है। अस्थायी भाव हास्य, आलम्बन दूसरे की विकृति, आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि। उद्दीपन हास्य रस उत्पन्न करने वाली चेष्टाएं, अनुभाव ओठ नाक आदि का स्फुरण, मुख का विकसित होना। संचारी आलस्य निद्रा आदि। उदाहरण, पिंद के बाद से उदास हुई, तपोव्रत धारी महाबीर नारी दुखारे, गौतम तीय तारी तुलसी सो, कथा सुनी वे मुनिवृंद सुखारे, वह हैं शिला सब चंद्रमुखी पर, से पद मंजुल कंज तिहारे, किनि भली रघुनायक जो करुणा करी, कानन कौ पगधारे। छठा भयानक रस। किसी भयप्रद वस्तु व्यक्ति स्थिति का ऐसा वर्णन जो मनोभय का संचार कर भयानक रस का व्यंजन करता है। इसके अवयव अग्रह हैं। अस्थायी भाव भय, आलंबन भयानक दृश्य, उद्दीपन आलंबन की चेष्टा, निरवता कोलाहल, अनुभाव कंप स्वेद, सर्वभंग पलायन मूर्छा। संचारी भाव आवेग शंका दैन्य चिंता। उदाहरण, उधर गरजते सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों से, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों से। यहाँ प्रलय कालीन समुद्र का भयप्रद चित्रण किया गया था। भयानक रस है। प्रलय काल में समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें आलंबन है, देवगण आश्रय हैं, भय अस्थायी भाव था, भयानक रस है। सातवां रौद्र रस। शत्रु अथवा अविनीत व्यक्ति की चेष्टाओं, गुरुजनों की निंदा, अपमान आदि से उत्पन्न क्रोध विभाव आदि संयुक्त होकर रौद्र रस में परिणत होता है। इसके अवयव इस प्रकार है। अस्थायी भाव क्रोध, आलंबन शत्रु, विपक्षी, देशद्रोही, गुरुद्रोही, दुराचारी व्यक्ति। उद्दीपन कटुवचन, शत्रु के द्वारा किए गए अपराध, अनुभाव नेत्रों का लाल होना, ओट फड़कना, दांत भींचना। संचारी अमहर्ष, मोह, मद, जड़ता, गर्व, स्मृति। उदाहरण, बोरव सबे रघुवंश कुठार के धार में, बारन बाज सत्तरथहीं, मान कि वाय उड़ाए के लच्छन, लच्च करव अरिहां समरथहीं। यहाँ परशुराम आश्रय है, राम लक्ष्मण आलंबन है, शिवधनुष उद्दीपन है। परशुराम की गर्वोक्ति अनुभाव है, गर्व एवं अमर्ष संचारी तथा रौद्र रस की अभिव्यक्ति हुई है। आठवां करुण रस। शोक नामक स्थायी भाव विभाव आदि के संयोग से करुणा से परिणत होता है। इसके अवयव निम्न है: स्थायी भाव शोक, आलम्बन, पेयजन का अमृत शरीर, इष्टनाश, संचारी निर्वेद, ग्लानि, चिंता, मोह, विषाद, दैन्य। अनुभाव अश्रुपात, विलाप, वैवर्ण, शिथिलता, स्थितिलोप। उदाहरण: राधव गीत गोद कर लीन हो, नयन सरोज स्नेह सलिल, सुच मन हो अरग जल दीन हो। जहाँ जटायु की मृत्यु का प्रसंग है, मृत जटायु आलम्बन है, राम आश्रय है, जटायु का शरीर उद्दीपन है, राम का आंसू बहाना अनुभाव है, चिंता क्रोध स्मृति संचारी भाव आता है, राम का शोक करुण रस में परिवर्तित हुआ है। नवा विभत्स रस। घृणा नामक स्थायी भाव विभाव आदि से संयुक्त होकर विभत्स रस में परिणत होता है। उसके अवयव निम्नवत है: स्थायी भाव जुगुप्सा, आलम्बन मांस, रक्त, अस्थि, शमशान, दुर्गंध। उद्दीपन रक्त मांस आदि का सड़ना, कुत्ते गिद्ध आदि राशव नोचना। अनुभाव थूकना, नाक भौंसी कोना, रोमांच संचारी, मोह जड़ता व्याधि। उदाहरण: सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचे ही जीव है स्यार, अति ही आनंद उर धारत। यहाँ स्थायी वाजी गुप्सा घृणा है, पाठक आश्रय है, आलम शमशान का दृश्य है, काग द्वारा आंख निकालना और दीपन है, इन सबसे पुष्ट होकर जिगुप्सा नामक स्थायी वाभिवत रस में परिणत हुआ है। दसवां अद्भुत रस। किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देख कर मन में विस्मय नामक स्थायी भाव हे विभाव आदि से संयुक्त होकर अद्भुत रस में परिणत हो गया। इसके अवयव निम्नवत है: स्थायी भाव विमर्श, विस्मय, आश्चर्य, आलम्बन अलौकिक या आश्चर्य उत्पन्न करने वाले वस्तु, उद्दीपन आलम्बन के गुण, अनुभव नेत्र फैलना, रोमांच संभ्रम, संचारी वितर्क, भ्रांति, हर्ष, आवेग आदि। उदाहरण: अखिल भुवन चर अचर, सब हरि मुख में लाखी मात, चकित भय गदगद वचन, विकसित ऋग पुलकात। यह माता कौशल्या आश्रय है, श्री राम के मुख में सभी लोगों को देखना आलम्बन है, चकित होना रोमांच, आंखें फैलना अनुभव है, ये सबसे पुष्ट होकर विस्मय स्थायी भाव रूप रस में परिणत हो गया है। ग्यारहवां भक्ति रस। भगवत विषय रति ये विभाव आदि से पुष्ट होकर भक्ति रस में परिणत होती है। इसके अवयव निम्न है: स्थायी भाव भगवत विषय रति, आलम्बन ईश्वर देवता गुरुजन इष्ट, उद्दीपन आलम्बन का रूप, भजन पूजन अनुभव, अश्रु रोमांस कंठ आवरण, नेत्र बंद होना, संचारी हर्ष, आवेग और धन स्मरण। उदाहरण: राम जपु, राम जपु, राम जपु बावरे, घोर भव निर्निधि नाम निज नावरे। यहाँ आश्रय कवि तुलसीदास है, आलम्बन श्री राम है, श्री राम का गुणगान अनुभव है तथा हर्ष संचारी भाव है।